चलिए आप सब बैठ जाइए। आप लोग हम लोग जैसा कि यह परंपरा ही है ब्रह्मा कुमारी की भगवान की याद से ही कोई कार्य शुरू होता है, तो हम सब एक मिनट परमात्मा को याद करेंगे, उसके बाद यह सेशन शुरू होगा। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब लोग। आप लोग अच्छे हैं? बाबा के घर में आनंद ले रहे हैं? तो हमें इस मंथन चिंतन को तो करना ही है, जो मीडिया कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति करने का भी एक मौका मिला है हमें, उसका भी हम सबको ध्यान रखना है। खूब साइलेंस का अनुभव कीजिए और भर के अपने घर जाइए। तो ये जो हम वन टू वन टॉक शो शुरू करें उसके पहले मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करूंगी कि वो जो हमारे अतिथि हैं डॉक्टर मान सिंह परमार सर, उनका बैज लगा के स्वागत करें। तालियों से आप लोग साथ निभाते रहिए। हम सब नाश्ता करके तो आए हैं ना, तो लगना चाहिए नाश्ता बाबा के यहाँ का पावरफुल है। अपने लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि आज कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है और जितने भी लोग इस हॉल में उपस्थित हैं तो वो इस बात का सबूत है कि बहुत गंभीर लोग हैं, समर्पित लोग हैं, जो पूरी कॉन्फ्रेंस का निचोड़ लेने के लिए तत्पर हैं। तो एक बार ताली अपने लिए जोरदार। आज ये जो पहला वन टू वन टॉक है, इसमें हमारे अतिथि हैं डॉक्टर मान सिंह परमार सर, जिनसे आप सबका परिचय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ। डॉक्टर पूर्व कुलपति, डॉक्टर साहब पूर्व कुलपति हैं कुशाबाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय इंदौर के। सर का एक बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारों को शिक्षित और दीक्षित करने का, और सर के पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं आज देश में बड़े बड़े स्थानों में सूर्य की भांति चमक रहे हैं, तो सर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पत्रकारों को गढ़ने में। दोस्तों विषय जो आज का है, समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव और उसका नियमन। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में मदद करता है, कम्युनिटी से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारा सहायक है, और हमारे व्यापार को बढ़ाने में सहायता कर रहा है, व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता कर रहा है, सामाजिक जागरूकता लाने में मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके बहुत ज्यादा उपयोग से, इसकी लत पड़ने के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दिक्कत दे रहा है। ये देखिए आप कि बुलिंग कर रहा है लोगों को, ट्रोलिंग हो रही है लोगों की, तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर भी सोशल मीडिया समाज में आया है। तो बहुत जरूरी है हम इस बात पे मिलकर मंथन चिंतन करें कि सोशल मीडिया की लिमिट क्या हो हमारे जीवन में, और इसके नियमन क्या हो, क्या इसमें नियंत्रण की जरूरत है या नियमन की जरूरत है। इन सारे ही विषय को लेकर हमारे पास बहुत वरिष्ठ अनुभवी वक्ता बैठे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टॉक शो में। अब मैंने बात चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें दे रहा है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, जिसको जो मन आता है वो पोस्ट करता है अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्या लगता है सर, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप?
नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय, जो प्रासंगिक भी है और वर्तमान में चिंता का विषय भी है। शुरुआत हम करते हैं, देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र पैदा होता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, और हमारे संविधान ने और खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को ध्यान रख करके, हमने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने चार्टर में इसको शामिल किया है, और खास करके हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) आप सब पत्रकार बंधुओं को कम से कम संविधान के प्रस्तावना और आर्टिकल 19(1)(a) का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसमें दी गई है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है, और हमारे संविधान में ये एक थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका के संविधान में पहला संशोधन हुआ तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ा, भारत में भारतीय संविधान में संशोधन हुआ तो हमने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, निर्बंधन लगाए थे। तो आर्टिकल 19(2) आपको बताना इसलिए जरूरी है और आर्टिकल 19(1) इसलिए जरूरी है कि जो सोशल मीडिया की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, जो आप सब लोग स्क्रीन पर अपने मोबाइल पर लगातार लगातार काम करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, तो ये स्वतंत्रता हमको भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) ऐसे मिली है, किसी ने किसी कोई उसको रोक नहीं सकता है। परंतु उस समय जब संशोधन हुआ तो इस बात की चिंता की गई, देखिए ये नियमन भी है सोशल मीडिया का कि आर्टिकल 19(2) में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे भारत की सुरक्षा, भारत राज्य की सुरक्षा, सुरक्षा मुद्दा है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, आज के समय में चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत में भारत की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो हम बहुत चर्चा करते हैं मीडिया में, अश्लीलता, डिसेंसी और मॉरलिटी जिसको हम कहते हैं, अश्लील सामग्री आप परोसेंगे तो उस पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तीसरा है मानहानि, किसी व्यक्ति की गरिमा या अपनी जो प्रेस्टीज है वो बनाने में उसको बरसों लग जाते हैं और मीडिया, सोशल मीडिया उसकी मानहानि कर देता है, समाज में उसको बदनाम कर देता है। तो मानहानि के मामले में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और इसी के साथ और है, अपराध के लिए उकसाना। हमारे पड़ोसी देशों के, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पॉइंट बता रहा हूं, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। हमारे जो पड़ोसी देश हैं या जो हमारे मित्र देश हैं, उनके संबंध में भी हम अनर्गल सामग्री का प्रसारण प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ, एक है न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर करेंगे तो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम की जा सकती। तो ये जो मुद्दे हैं ये सोशल मीडिया पर भी लागू होते हैं, केवल प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं, सोशल मीडिया पर आप भी अगर इस तरह का कंटेंट जनरेट करेंगे, कंटेंट को भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, सेंड करेंगे, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परंतु ये बात जरूर है कि अगर आप इस तरह की सामग्री नहीं देते हैं तो सोशल मीडिया ने लोगों को जुबान दी है, बेजुबान को जुबान दी यूं कह सकते हैं, गरीब और पिछड़े और दलित लोगों को आवाज दी है। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया पूरे विश्व में एक क्रांति का काम कर रहा है।
सर आपने कहा कि आपने गिना दिया कि कहां कहां रिस्ट्रिक्शंस हैं, हालांकि बहुत जरूरी था, मुझे नहीं लगता ऐसे बहुत सेशन देश में हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने तो, मैं बात पूरी करूं, मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूं, क्योंकि हो क्या रहा है कि टीवी, हम सब पत्रकार हैं, हमें हमारी मर्यादाएं पता होती हैं, हम उसके भीतर रह के काम करते हैं क्योंकि हमें कार्रवाई का डर भी और हम जागरूक भी हैं उसके प्रति। लेकिन सोशल मीडिया की जो बात करते हैं तो नाम में ही सोशल जुड़ा हुआ है, मतलब वो जनता के हाथ का एक अस्त्र हो गया है। जनता को अवेयर करने वाला मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई इस तरह के सेशंस होते हैं, सरकार ने कोई प्रयास किया हो या निजी तौर पर कोई प्रयास किया हो कि आपको कहां कहां रुकना है, आप यहां कानून के दायरे में आते हैं। खैर इस पे आगे बढ़ते हैं, इस पे और बात करेंगे। आपने कहा कि एक क्रांति का काम भी किया है, अब बात क्रांति पे आगे खत्म की तो मैं ये सवाल बाद में लेने वाली थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि उसको मैं रिलेवेंट कर दूं इसी से। क्रांति तो कई तरह की हो रही है सर विश्व में, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन हम ज्यादातर नेगेटिव उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। कई लोग उसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखते हैं, वो नजरिए का भी फर्क हो सकता है। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, मूल में उसके सोशल मीडिया ही था, तो नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, भारत के चारों तरफ जो देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चाइना में नहीं हुआ है परंतु हमारे लिए खतरा है। अब नेपाल की जो आपने बात की है उसमें सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो है। देखिए, क्रांति दो तरीके की होती है, एक खूनी क्रांति होती है और दूसरी होती है शांति की, शांति से क्रांति। नेपाल में जो कुछ हुआ, मुझे इस बात का दुख है कि जो जैन जी, जिसको हम कहते हैं एक उम्र के दायरे में आने वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपने देश को ही चला डाला। जैसे उन्होंने जो लोकसभा या विधानसभा या सरकारी बंगलो या मंत्रालय को जलाया, वो किसकी संपत्ति थी? वो नेपाल के लोगों की संपत्ति थी, उसको क्यों जलाया? वहां सत्ता परिवर्तन होना था, भ्रष्टाचार बहुत था, बहुत सारी चीजें हैं, उससे हम सहमत हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र भी नजर आता उस मुद्दे के ऊपर, परंतु ये सोशल मीडिया को समझना होगा कि हम नफरत या गलत तरीके से कोई चीज हासिल करना चाहते हैं या सही रास्ते से उसको चुने, बहुत गंभीर मुद्दा है, बांग्लादेश का भी और नेपाल का भी। तो नेपाल फिर से खड़ा होगा, वहां की प्रधानमंत्री कहती है कि हम जीरो स्टेट हो गए हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं, सारे चीजें जल करके राख हो गई है। तो ये किसका नुकसान है? भारत का संविधान इतना मजबूत, और जो संविधान निर्माताओं ने उसको इतना मजबूत बनाने की कोशिश की है कि 75 साल में हमारे देश में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, शायद भविष्य में भी कोई ऐसी घटना घटित न हो, पर जो आप अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमारे देश को भी कमजोर करने के इस तरह के प्रयास और षड्यंत्र वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है, सोशल मीडिया को सावधान रहने की जरूरत है।
सर हमारा विषय ही है समाज पे क्या प्रभाव है सोशल मीडिया का। मैं बड़ा एक चौंकाने वाला आपको बताती हूँ आंकड़ा, हो सकता है आप लोगों को पता हो क्योंकि हम सब पत्रकार हैं, लगातार हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि विश्व में, अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहां का जो औसत समय है प्रतिदिन का सोशल मीडिया पे समय बिताने का वो 2 घंटे 9 मिनट है। ये एक दिन का उनका एक औसत उन्होंने निकाला है कि लोग कितनी देर सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, 2 घंटा 9 मिनट। लेकिन भारत का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो ये प्रतिदिन 5 घंटे हो जाता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे ज्यादा भी ये लोग यूज कर रहे हैं। कई बार बैठते सुबह और 3-4 घंटे 5 घंटे उनको पता ही नहीं चल रहा है वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं या जो कंटेंट उन्हें पसंद है वो देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये इतना चौंकाने वाला आंकड़ा है कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी को कितना प्रभावित कर रहे हैं। 5 घंटे अगर हम बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे तो दूसरे अच्छे काम भी हम कर सकते थे उस दौरान। तो समाज पे, भारत में, भारतीय समाज पे इसका क्या प्रभाव आपको इस वक्त नजर आ रहा है?
देखिए, भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, भारतीय रीति रिवाज परंपराएं बहुत मजबूत हैं, परंतु वर्तमान में हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, संबंध कमजोर हो रहे हैं। एक ही परिवार में लोग रहते हैं, उनको बात करने की, आपस में चर्चा करने की, एक टेबल पर लंच या डिनर करने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है हम किताबें पढ़ने छोड़ दी हमने। उसके देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। सोशल मीडिया के बहुत सारे सकारात्मक बातें हैं, सकारात्मक पहलू हैं। पूरे विश्व को एक गांव बना दिया, जो हम वसुधैव कुटुंबम कहते थे वो सोशल मीडिया ने किया है। इसी के साथ हम अभी अमेरिका में किसी भी विश्व के किसी भी स्तर पर कनेक्टिविटी हमारी हो सकती है, और कई सूचनाएं तुरंत प्रेषित हो जाती हैं। पहले हम ट्रंक कॉल लगाते थे तो घंटों बैठे रहते थे टेलीफोन ऑफिस में। तो कुल मिलाकर के इसके सकारात्मक पहलू बहुत अधिक है, क्योंकि ये एक बहुत ही भविष्य का मीडिया है, यूं कह सकते हैं। भविष्य की जो हमारी जनरेशन है उसके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। परंतु समाज में कुछ विकृतियां, एक अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला मैं आपको बताता हूं। एक पॉडकास्ट पर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उस पॉडकास्ट पर उनका मजाक उड़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कमर्शियल बातों को, कमर्शियल प्रसारण को अनुमति नहीं है, इस पर बैन होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, और निर्देश दिए केंद्र सरकार को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को, कि सोशल मीडिया को के कंटेंट का नियमन करने के लिए कुछ प्रयास करें, कुछ रूल्स बनाएं और लागू करें। ये बहुत जरूरी है कि जो नुकसान हो रहे हैं, समाज का नुकसान, और बच्चे, आप देखिए, अब बच्चा पैदा होने के जब कुछ समय बाद ही अगर आप उसको मोबाइल दे दो तो वो उंगलियां चलाने लगेगा, ऐसी स्थिति हो गई। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर क्या क्या कमाल करते हैं, क्या क्या देखते हैं। और मैं पहले ये कहता था, अभी भी कई बार कहता हूं, कि सोशल मीडिया पर गार्बेज भरा हुआ है, उस गार्बेज में से आपको कुछ चुनना है, मोती चुनना है, कुछ अच्छी चीजें लेना है। इतना कंटेंट, आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो ढेर सारा कंटेंट आ जाएगा, उसमें कुछ गलत भी होता है, आप करके देखिए, बहुत सारी बातें हैं। तो ये बहुत जरूरी कि हम उपयोग कैसे करें। देखिए, इसके लिए मीडिया साक्षरता बहुत जरूरी है लोगों में, और जब मीडिया साक्षरता आएगी, खास करके सोशल मीडिया के लिए, एक बात और मैं पिछली बार भी कही थी, कहीं कहीं ऐसा लगता है, हालांकि इतनी ज्यादा संख्या है कि कैसे करेंगे, पर कुछ सोशल मीडिया,
याद करो मन से शिव को।
मैं बात कर रहा था प्रशिक्षण की, कुछ जैसे कुछ दिनों का प्रशिक्षण जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें जो लोग काम करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अन्य जो ओटीटी के फील्ड में जो लोग काम करते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि आचार संहिता, कुछ मूल्य, कुछ समाचार और सूचना में क्या फर्क होता है, कौन सी सूचना को समाचार बना करके प्रसारित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह का एक व्यापक प्रशिक्षण का दौर चलना चाहिए। अलग अलग राज्यों में हो सकता है, कुछ विश्वविद्यालयों को जिम्मा दिया जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो मीडिया साक्षरता की, सोशल मीडिया साक्षरता की मैं बात कर रहा था, तो मीडिया को तो समझे तो सही ना कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया का काम विकास भी है, पर आपके गलत शब्द विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। आप महात्मा गांधी ने यह कहा था अपने उस समय कि बरसात का पानी अगर अनियंत्रित हो जाए तो वो कई शहरों को, कई गांवों को बहा के ले जा सकता है। इसीलिए अगर मीडिया अनियंत्रित हो गया तो क्या क्या बहाएगा ये कुछ पता नहीं, ये महात्मा गांधी ने उस समय बोला था। तो अब वो बहाने वाली बात नेपाल में भी हो गई है, तो ये बात मैं हर जगह बोलता हूं। एक और मुद्दा मैं बताना चाहूंगा प्रियंका कौशल जी, कि हमारे देश में सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, इसलिए ये बात बताना जरूरी है कि आप सब जानते हैं प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नियमन नियंत्रण जो भी कहिए काम करती है। आप सब जानते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। दूसरा, फिल्म को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड है, परंतु ओटीटी पर रिलीज होने वाले जो भी फिल्म सीरीज उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नियमन नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उन्होंने खुद स्वनियमन के लिए ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन या प्रसारणकर्ता एसोसिएशन ऐसा बना लिया है, वो खुद स्वनियमन करते हैं। अभी तक सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई नियमन का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन नहीं बना है। मैं हमेशा अपनी बात में राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहता हूं कि इस देश में एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विज्ञापन का क्षेत्र और फिल्म का क्षेत्र, इन सब को कई नियमन का जिम्मा उसका होना चाहिए और इसमें अलग अलग विभाग बना दिए जाएं, अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाएं और सोशल मीडिया का एक अलग प्रभाग बना दिया जाए और उसके नियमन की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत सरकार न जाने क्यों और पत्रकार लोग
इसमें, सर आपको बीच में रोकना चाहूंगी कि आप नियमन की बात कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं, नियमन हो, नियंत्रण हो, आत्मनियंत्रण हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, क्या होना चाहिए इसमें, क्या हो सकता है इसमें?
नहीं, देखिए नियमन तो सबसे उत्तम व्यवस्था है, स्वनियमन उससे भी अच्छा है। आप खुद अपने काम का नियमन करें, आपको क्या, आपको कंटेंट को भेजना, सेंड करना, क्या नहीं भेजना है, परंतु वो हो नहीं रहा है ना। अभी देखिए आप सोशल मीडिया पर देखिए, अश्लील सामग्री इतनी है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, झूठी बातें, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। बेचारा ट्रंप तो परेशान होकर के उन्होंने फेक न्यूज अवार्ड शुरू कर दिया अमेरिका में, जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज देगा उसको वो व्हाइट हाउस में बुला करके और अवार्ड देंगे, वो परेशान है। हमारे यहां भी कुछ नेता या जो बड़े पदों पर परेशान है, परंतु जो प्रेस काउंसिल बनाया है वो नियमन के उद्देश्य को लेकर के बनाया है, ना कि नियंत्रण को लेकर के। मेरा ये सोचना है कि जो पत्रकारिता के फील्ड के लोग हैं, सोशल मीडिया के फील्ड के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, जो फिल्म के लोग, वो सब मिलकर के उन लोगों को लेकर के और मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। ऊपर से कोई आदमी नहीं थोपना चाहिए। अभी भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जज उसका अध्यक्ष होता, चेयरमैन होता। मेरा ऐसा मानना है कोई बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है, मीडिया एक्सपर्ट है, मीडिया प्रोफेशनल है, मीडिया शिक्षक भी हो सकता है, उसको वो जिम्मा दिया जाए और नियमन का काम करे, नियंत्रण का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहां विकास की गंगा बहती है, वहां बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूं, नियमन के पक्ष में हूं, परंतु जो कुछ अभी मीडिया में हो रहा है, अभी मैंने कल कहा था हंगामा खड़ा करना मेरा, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हंगामा ही खड़े होते हैं और कुछ होता ही नहीं है। आप देख लीजिए जितने चैनल में जो चर्चाएं होती है उसमें एक दूसरे को कभी मारने दौड़ते हैं, कभी हाथ बताते हैं, कभी एंकर को बोल देते हैं कि तुम तो बीजेपी के एजेंट हो, कभी कांग्रेस के एजेंट हो, मतलब मीडिया पर उंगलियां उठने लगी है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए ये निर्धारित करना चाहिए, और एंकर को भी मजा आता है क्योंकि टीआरपी बढ़ती है, चैनल को भी उसमें फायदा होता है, परंतु जो लोग देखते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो युवा पीढ़ी टीवी देखती है उन पर क्या असर पड़ेगा, आप देखिए कुछ तो एंकर चेयर पे से उठ उठ कर गिरते हैं ऐसे जब बोलते हैं तो, और जो बीजेपी कांग्रेस और जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं उनकी स्थिति तो और बहुत खराब है, नॉलेज होता नहीं है और चिल्लाना बस एक उद्देश्य होता है, जोर जोर से जो बोले वो अच्छा प्रवक्ता। तो ये इसमें कहीं न कहीं नियमन की बात आना चाहिए, परंतु एक कोई संवैधानिक संगठन बनना चाहिए जो इसको मॉनिटर करे, और प्रेस काउंसिल को भी कोई दंड देने की पावर है ही नहीं, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना दिखाने के, काटने के नहीं होते, वैसे ही प्रेस काउंसिल है, कोई दंड नहीं दे सकता प्रेस काउंसिल पत्रकारों को। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो समग्र रूप से एक जैसी हो। मैं ये कह रहा था कि भाई सेंसर बोर्ड तो जो टॉकीज में फिल्म रिलीज होती उसको तो सेंसर कर देता, और ओटीटी पर आप कुछ भी परोस दीजिए, तो ये अंतर कैसा, ये नहीं होना चाहिए। प्रिंट मीडिया के लिए तो प्रेस काउंसिल बनाई आपने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया अनियंत्रित है, तो कहीं ना कहीं एक समान नियम, एक समान रूल्स, एक समान नियमन पूरे देश में मीडिया के लिए होना चाहिए।
उसके पीछे सर ये भी एक कारण जिम्मेदार है ना कि जो भी इंटरनेट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो ओटीटी हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, भारत सरकार ये सब बनाया हुआ बाहर से है, तो नियंत्रण भी अमेरिका या जिस कंट्रीज के ये प्लेटफॉर्म है उनका ज्यादा रहता है। हाँ, एक यहाँ नियमन के लिए स्वनियमन हो, कोई चार लोग बैठ के ये तय करें कि भाई जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भले ही वो ऐसा हाथी है जो काटता नहीं है, सिर्फ दिखा के डराता है दांतों को, यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए तो एक रहता तो है कि भाई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो आपको रोकेगी टोकेगी, दंडित भले ही ना करेगी लेकिन आपको कम से कम टोकेगी जरूर। सर एक चीज और प्रश्न उठता है मन में कि आपने क्योंकि न्यूज चैनल्स का भी जिक्र किया इस बीच में सोशल मीडिया की इस बात में, तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि एक परसेप्शन सा बन गया है समाज में कि अरे सारे चैनल्स तो एक बायस्ड हैं लेकिन ये सोशल मीडिया है जो हमें सच्ची खबरें दे रहा है, ऐसा भी एक परसेप्शन समाज में बनता जा रहा है। लेकिन फिर बात यहाँ फैक्ट चेक की भी आती है क्योंकि अफवाहों को फैलाने का माध्यम टूल भी सोशल मीडिया ही इस वक्त बना हुआ है। खबर आ रही है वो सत्य है असत्य है, इसको कैसे चेक करें? और ये जो समाज में परसेप्शन बन गया है कि भैया जो मुख्य धारा की मीडिया है वो बायस दे, अगर खबर चाहिए तो सोशल मीडिया पे जाइए, वहां आपको सारी खबरें मिल जाएगी, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, तो ये दोनों विरोधाभासी चीजें चलती है साथ साथ, तो ये कैसे फैक्ट चेक कैसे हो?
नहीं, फैक्ट चेकिंग तो होना चाहिए, और जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बायस्ड हो गया है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तरफा कुछ चैनल समाचारों को या कुछ लोगों को की बातों को प्रसारित करते हैं, और सोशल मीडिया निःशुल्क से कोई कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी हो आप देते हैं, कभी कभी उसका बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा बातें भी आती हैं, परंतु कभी कभी बहुत आपत्तिजनक भी बातें आती है। पर देखिए अभी एक सर्वे या एक कुछ रिसर्च हुआ था, उसमें बात आई कि न्यूज़पेपर को लोग कहते थे पढ़ते ही नहीं है या पढ़ेंगे नहीं, अब तो सब स्क्रीन पर पढ़ेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, न्यूज़पेपर की जो सर्कुलेशन है वो चमत्कारिक ढंग से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है, और मैं तो ये कहता हूं विश्वसनीयता के मामले में प्रिंट मीडिया का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जितनी खबरें आती हैं आप टीवी चैनल पर 3 घंटे 4 घंटे तक सुनते रहते हैं वो एक कॉलम में समेट जाती है। तो उस खबर की जो महत्ता है, उसकी जो न्यूज वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो समझ में आती है कि उसकी क्या न्यूज वैल्यू है। तो ये समझना होगा कि जो समाचार पत्र में एक कॉलम में आता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 4 घंटे खराब कर देता, और सोशल मीडिया पूरे समाज में पूरे देश में एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला देता है। तो इस पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। प्रियंका जी, एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने एक आईटी एक्ट बनाया है 2000 में, और उसमें संशोधन भी किया है 2021 में, आईटी रूल्स 2021। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि जिसके कारण से सोशल मीडिया पर कुछ बातें आती, जो मैंने आर्टिकल 92 में जो बातें बताई थी वो इसमें भी है कि देश की सुरक्षा का मामला हो, अश्लीलता का मामला हो, बालकों के यौन शोषण का मामला हो, या महिलाओं का गलत तरीके से प्रेजेंटेशन हो, उसके ऊपर उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा व्यक्ति बैठाना पड़ेगा जो उसको निगरानी रखे। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें उस आईटी एक्ट 2000 में प्रावधान किया गया है, खास करके वो सोशल मीडिया पर ही लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करी। अब यहाँ नियमन की बात नहीं आती है, तो नियंत्रण हो गया, एक तरह का नियंत्रण हो गया अगर आईटी एक्ट लागू होता है। और अभी अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, कोर्ट ने भी आईटी एक्ट की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, बहुत सारी बातें हुई हैं। परंतु यहाँ हम सोशल मीडिया के नियमन की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, स्वनियमन सबसे उत्तम उपाय है सोशल मीडिया का। परंतु उसको कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका एक माध्यम ये भी है, ब्रह्मा कुमारी में हम आए हैं, स्वनियमन यहाँ से होगा, यहीं से शुरुआत होगी स्वनियमन की, क्योंकि हम यहाँ मूल्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, अच्छे समाचार की बात कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं समाज में, लोगों में पहुंचे, नहीं तो देखिए सब मोबाइल लेकर के घूमते रहते हैं और जो बोलना हो बोल देते हैं। प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है,
मैं तो देख रही हूँ, देख भी रहे मोबाइल देखिए यही तो है एडिक्शन, बिना देखे तो वो काम ही नहीं चलता। मतलब मैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो अपडेट लेने की आदत पड़ गई ना हमको, बार बार फेसबुक पे इंस्टा पे जाके लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। पत्रकारों के लिए जरूरी भी है, सूचनाओं के लिए हम लोग देखते हैं बार बार।
ये मतलब मानसिक रूप से लोग वो भी हो रहे हैं, परेशान भी, मतलब शारीरिक रूप से तो नुकसान होता ही है इसका, आपके मोबाइल की स्क्रीन का। परंतु कुछ लोग आप देखते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे और कुछ करने लगते हैं, कोई चौथी मंजिल से कूद के देखता है कि सोशल मीडिया पे तो ऐसे बताया है, कोई जहर खा के देखता है कि जहर खाने के बाद असर होता है कि नहीं होता, ये सब सीखते हैं। आप सुसाइड कैसे करेंगे सोशल मीडिया बताता है, कैसे फंदा बनाना है, कैसे लटकाना है। तो ये सारी चीजें समाज में, हमारी खास करके युवा पीढ़ी, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे सबसे युवा है, मतलब यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, उन युवाओं का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगता है कि हमने छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया, शिक्षा में उसका उपयोग हो, हमने कोविड के समय देखा उसका सोशल मीडिया का उपयोग हुआ, बहुत अच्छी सूचनाएं हुई, बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, तो उसके बहुत अच्छे वो भी है, परंतु उसके दुष्परिणाम भी है।
इतनी अच्छी बातचीत हो रही है, लग रहा है और भी इतना बड़ा विषय है, गहरा समुद्र डूबते चले जाइए हीरे मोती पाने के लिए, क्योंकि समय की मर्यादा है। सर, मैं एक सवाल पूछ के बात को खत्म करना चाहती हूँ, फिर कभी बैठेंगे तो इस पे और आपका इतना गहरा ज्ञान है कि हम लोग लाभ उठाएंगे। ये सोशल मीडिया डिटॉक्स एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है इस वक्त, तो मैं चाहूंगी संक्षेप में थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, कितना जरूरी है ये?
देखिए, समग्र विकास के लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से डिटॉक्स होना चाहिए, पर इस पर अभी इसके बाद में एक पूरा सत्र है डिजिटल डिटॉक्स पर, तो हम विस्तार में उस पर ना जाएं, परंतु ये इसकी आवश्यकता है और वो बहुत जरूरी है।
मुझे लगता है बहुत कम समय में सर ने बहुत सारगर्भित अपनी बात रखी है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ सत्र को समाप्त करते करते कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर भी है। आप देखिए इतना बड़ा मंच दिया युवाओं को, आज ऐसे नाम है जो कभी टीवी पे नहीं आए, अखबारों में नहीं छपे, लेकिन हम उन्हें जानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति भी है अगर उसको हम सही तरीके से यूज करें, हम दर्शक ना बन के रह जाए उसके, हम स्क्रॉल ना करते रह जाए, हमें क्या बनना है, हम ऐसा बने कि लोग हमें देखने के लिए सोशल मीडिया खोलें, हम ऐसा उसका बेहतर यूज करें, ज्ञान बढ़ाएं, अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, उसके गुलाम तो हमें बिल्कुल नहीं बनना। और पत्रकारों को खासतौर से कहूंगी क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, बहुत समय हम लोग वैसे भी कंप्यूटर पे और गैजेट्स पे ही बिताते हैं, तो हम सोशल मीडिया को सिर्फ अपने उपयोगी टूल के रूप में यूज करें। और हम जो जाएंगे, हमें क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं तो एक मैसेज हमें देना ही चाहिए, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत दिग्भ्रमित हो रही है सोशल मीडिया के ही प्रभाव में आके। सर ने कहा कि वो सीख रहे हैं कि कैसे सुसाइड करना है, एक टेबल पे लोग खाना खा रहे हैं, साथ में सफर कर रहे हैं, पांचों के हाथ में फोन है, सब अपने फोन पे, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा, बात नहीं करने से समस्याएं पैदा हो रही हैं, हम कितनी बड़ी समस्याओं को अपने घर में लेके आए, लेकिन हमें शक्ति बनाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था जो इस वन टू वन टॉक में हमने लिया, आदरणीय परमार सर ने बहुत गहराई से उस पर विश्लेषण किया, प्रकाश डाला। मैं प्रियंका कौशल हूँ, मेरा परिचय तो ब्रोशर में भारत एक्सप्रेस की रेसिडेंट एडिटर के रूप में लिखा है, लेकिन यहाँ आते आते मेरा संस्थान चेंज हो गया, हम सब समझ सकते हैं कभी भी बदल जाते ना हमारे संस्थान। इस समय जनमंत्र न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ, रायपुर में रहती हूँ। आप सबने बहुत बहुत धैर्य के साथ इस सेशन को सुना, बहुत सारा आपको धन्यवाद, शुक्रिया। बात खत्म करूंगी इसी बात के साथ कि भगवान के घर में आप आए हैं, हम सबने बहुत लंबा अनुभव किया है इस स्थान का, आप सब जरूर अपना मेंटल डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स करके यहाँ से जरूर जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत विशेष करतल ध्वनि से धन्यवाद आदरणीय बहन प्रियंका कौशल जी का, भ्राता प्रोफेसर मानसिंह परमार जी का, बहुत सुंदर रहा यह सेशन। अब आपका नेक्स्ट वन टू वन टॉक सेशन टू रहेगा, जिसका विषय है प्रमोटिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, नैतिक और जिम्मेवार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहन बीके ज्योति, नोएडा टीवी जर्नलिस्ट, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी।